नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच, वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। तमा भगवान् प्रेष्ठा भक्त मे कान्तिनं क्वचि गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरिः। गच्छोद्धव ब्रजं सौम्या पित्रोर्नव प्रीतिमावह गोपीनामद्वियोगाधीन् मत्सन्देशैर्विमोचया। कृष्ण करणामृत से प्रार्थना है भगवान कृष्ण से। बिनु मंगल ठाकुर कहते हैं, कमनीय किशोर मुग्ध मूर्ते कल कुबेड़ कणिता दृता नेन्द मम वाचि विजृंभता मुरारे मधुरीम डह कणिका पिका पिका पी। जिनका किशोर स्वरूप अत्यंत अभिलषणीय है तीनों लोकों में सबके द्वारा, और जो अत्यंत ही मुग्ध हैं, विभोर हैं ब्रजलीला में, और जिनके मुख चंद्र में बांसुरी का सम्मान हो रहा है, वेणु का आदर हो रहा है, ऐसे मुरारी के भगवान कृष्ण के माधुरी की कोई भी एक कणिका मेरे जिह्वा पर प्रकाशित हो। मम वाची विजृंभता, वाची का अर्थ मेरे वचन पर, मेरे वाणी में, वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण के कोई भी माधुरी का एक कण भी हमारी जिह्वा पर उदित हो। कणिका का अर्थ होता है एक छोटा सा बिंदु, मधुरिम्रह कणिका, पूरी की कणिका चाहे, कहाँ ममवाची मेरे वचन पर, मेरी वाणी में। तो इस कामना के साथ कि भगवान श्री कृष्ण की माधुरी की कणिका जीवा पर स्फुरित हो, इसके लिए बिलमंगल ठाकुर के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, जिनका कृष्ण करणामृत वास्तव में भगवान के करण के लिए अमृत, और जुग जुग तक अजर अमर रहेगा। दूसरी प्रार्थना करते हैं, मद शिखंड शिखंड विभूषण मदन मंथर मुग्ध मुखाबुज ब्रज बधुनयनांजनरंजित विजयता मम वांग्मय जीवित। जिनके सिर पर शिखंडी का शिखंड है, तो जो मयूर के पंख के सिरोभूषण से विभूषित हैं, और जिनका श्री विग्रह विशेष करके मुख है अत्यंत ही प्रेम में विभोर है, खिला हुआ है जिनका मुख कमल, और जो ब्रजवधुओं के नयन अंजन से रंजित हैं, ऐसे प्रभु ही मेरे वाणी के जीवन हैं। श्री कृष्ण ही मेरे वांग्मय जीवित, हमारे वाणी के जीवन वही। आचार्यों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही भ्रमर बनकर गोपियों के और विशेषकर श्री राधा जी के प्रिया जी के उद्गारों को सुनने के लिए ब्रज में प्रकट हुए थे, वही भौंरा बने हुए थे। कुछ महानुभाव का ऐसा मत है और कुछ का कहना है कि वास्तव में कोई भौंरा था जो राधा रानी के चरण के सुगंध से लुब्ध होकर के चरणों का स्पर्श कर रहा था, तो उसको दूत के रूप में कल्पना करके राधा रानी कृष्ण के प्रति अपने भावों को व्यक्त करती हैं, तो इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। अथवा उद्धव जी को ही भ्रमर के बहाने राधा रानी कृष्ण के बारे में कुछ कह रहे हैं, उद्धव को ही भ्रमर के रूप में, उद्धव जी सामने हैं इसलिए उनको कुछ कहना ठीक नहीं है, वो प्रियतम के सखा हैं, महान हैं, तो उद्धव जी को सुनाने के लिए ही भ्रमर का बहाना करके कुछ कहा जा रहा है, उसको भ्रमर गीत कहते हैं। और वैसे प्रसिद्ध है उद्धव संदेश, अधिकतर यही प्रसिद्ध है उद्धव संदेश। उद्धव संदेश का अर्थ है उद्धव के द्वारा कृष्ण का संदेश जो ब्रज में पहुंचाया गया, लेकिन उद्धव संदेश यह भी होता है कि गोपियों ने जो उद्धव जी को कहा कृष्ण से कहने के लिए वह भी उद्धव संदेश। बीच में उद्धव जी को माध्यम बनाकर जो भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम प्रकट किया है ब्रजवासियों के प्रति और विशेष करके श्री गोपीजनों के प्रति, वह गोपीजनों ने अपने प्रेम भाव को कृष्ण के प्रति जो प्रकट किया वह भी उद्धव संदेश। तो उद्धव जी को ही भगवान कृष्ण क्यों अपने दूत बनाए इसको कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि गोपी नाम सांत्वनम अपि सन्मंत्री साध्यम इति तदर्थम उद्धवम विशिनष्टि वृष्णि नाम इति। गोपियों को सांत्वना देना एक रहस्यमय कार्य था और भगवान कृष्ण के किसी सन्मंत्री बहुत ही सुशिक्षित और कृष्ण जैसा महान यदि कोई मंत्री हो तो वही गोपीजनों को सांत्वना दे सकता था। तो भगवान ने बहुत विचार करके उद्धव जी को ब्रज में भेजा, तो इसलिए उद्धव जी में क्या गुण है यह बताना आवश्यक है, क्यों भगवान कृष्ण उद्धव को ही ब्रज में भेजे। तो उद्धव के कुछ गुणों को गिना रहे हैं। वृष्णि नाम प्रवर, पहली विशेषता है वृष्णियों में श्रेष्ठ प्रवर। भागवत में कहा है कि वृष्णि वंशियों में मैं उद्धव हूं, तो बहुत बड़ी बात हो गई, भगवान के प्रतिनिधि और मंत्री, उनके मंत्री थे, तो वृष्णि वंशियों का मंत्री होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत बड़े संकट से वृष्णि वंशियों को जादुओं को उबार लाए थे उद्धव जी बुद्धि दे करके, जरासंध जैसे बड़े से बड़े राजनेताओं के भी मत को परास्त कर दिए थे। तो मंत्री थे, मंत्री का अर्थ होता है जो मंत्र दे और मंत्र का अर्थ होता है परामर्श। किसी विकट परिस्थिति में भी ऐसा मंत्र दे दे कोई जिससे कि कोई मंत्र लेने वाला व्यक्ति संकट से पार हो जाए, तो उसको मंत्र सिद्ध मंत्र, सिद्ध मंत्र व्यक्ति कहते हैं। किसी भी भीषण से भीषण परिस्थिति में उद्धव जी तत्काल समाधान कर देते थे किसी बात का, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, जिसको मंत्री कहते हैं, जो देश और काल के अनुसार सुंदर युक्ति बतावे और अपने समाज को कृच्छ्र से कठिनाइयों से उबार ले उसको मंत्री कहते हैं। कि बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य थे, बृहस्पति जी ने देखा कि यह लड़का अति तीक्ष्ण बुद्धि का है, तो स्वयं ही उनको पढ़ाने लगे हुए, और जो भी पढ़ने जाते थे स्वर्ग में तो बृहस्पति जी अपने शिष्यों के द्वारा पढ़ाया करते थे, और लोगों शिष्यों को लगा देते थे उसको पढ़ा दो उसको पढ़ा दो उसको पढ़ा, लेकिन उद्धव जी को स्वयं पढ़ाए थे, इसीलिए बृहस्पति साक्षात शिष्य कहा गया, साक्षात शिष्य, न तो शिष्य आदि द्वारा अध्यापनम, शिष्य आदि द्वारा नहीं पढ़ाया था, साक्षात पढ़ाया। तो नीति शास्त्र में विशारद थे, न्याय शास्त्र में, लेकिन एक ही शास्त्र उद्धव जी नहीं पढ़े थे, जो कि उनके गुरु जी भी नहीं पढ़े थे, बृहस्पति जी भी, वो था कृष्ण प्रेम शास्त्र। इसको कौन पढ़ावे उद्धव जी को, भगवान ने सोचा कि यह मेरा प्रिय मित्र, समस्त सद्गुणों में मेरे समान, लेकिन एक प्रेम शास्त्र को ये नहीं पढ़ा है, तो इसे गोपिकाएं पढ़ाएंगी, उन्होंने ये सोचा। तो उद्धव को इसीलिए ब्रज भेजे ये पढ़ने के लिए कि विश्व का इतना महाविद्वान यदि गोपी प्रेम की सराहना करेगा तो संसार के बहुत से लोग गोपियों के इस गूढ़ प्रेम को समझकर मुझसे प्रेम करना सीख जाएंगे। मुख्य बात यह थी कि भगवान ने कहा था दूत से कि आयास से मैं आऊंगा, जैसे दो बार उन्होंने कहा था द्रष्टुमस्यामि। जब भगवान ब्रज से विदा हो रहे थे, रथ पर चढ़ गए थे और गोपियां प्रत्यागमन का संदेश चाहती थी, तो भगवान ने एक दूत भेजा और कहा कि कह दो कि आयास से मैं आऊंगा, ये तो कहकर मथुरा चले गए। और जब मथुरा में उनके साथ साथ उनके सखा गए, नंद महाराज आदि गए, लेकिन इन लोगों को जब ब्रज में विदा करने लगे, वे नहीं लौटे, श्री कृष्ण इनको विदा करने लगे, ये लोग नहीं आ रहे थे, तो भगवान ने कहा था कि द्रष्टुमस्यामि, मैं अपने बंधुओं को देखने आऊंगा। तो ब्रजवासी कृष्ण की आज्ञा मानकर ब्रज में लौट गए थे, और भगवान को हमेशा ये बात याद रहती थी कि मैंने आज जाने के लिए कहा है, यह कहा है, वह कहा है, और यह भी जानते थे कि मेरे विरह में ये ब्रजवासी जी नहीं पाएंगे, तो ये सोचते थे आज चलूंगा कल चलूंगा, यह कार्य कर लूं वह कार्य कर लूं, लेकिन भगवान जा नहीं पा रहे थे, कोई न कोई काम लगा रहता था। सबसे व्यस्तता तब हो गई जब उन्होंने कंस का वध कर दिया। कंस एक राजा था और जरासंध का दामाद, तो इस कारण से जादवों पर विशेष संकट आ गया, तो उनकी साल संहार करने के लिए भगवान रुक गए, और इसके बीच में वे पढ़ने भी गए उज्जैन अवंती का, चाहते हुए भी अपने सुहृदों का, अपने माता पिता का या गोपीजनों का दर्शन चाहते हुए भी वे ब्रज में नहीं जा पाए, किसी भी प्रकार से भगवान को फुर्सत नहीं मिली, वे विकल हो गए और किसी तरह से ब्रजवासियों को सांत्वना देना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे फुर्सत नहीं है, अवसर नहीं है, तो उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में। जी के और भी बहुत से गुण यहाँ बताए गए हैं, परंतु मैं लास्ट ईयर में इस प्रसंग को विस्तार से कहा था, जिसको विस्तार से कहा था उसको संक्षेप में कहूँगा, जिसको संक्षेप में कहा था उसका विस्तार करूँगा। तो इन दोनों श्लोकों की मैं बहुत व्याख्या किया था पर साल, इसलिए यहाँ नहीं ले रहा हूँ। इतना ध्यान रखना चाहिए कि उद्धव जी के जो गुण बताए गए हैं, वे उनके वक्तव्य में जब गोपीजनों से बात करेंगे आनंद महाराज यशोदा जी से, तो उस समय उनके भिन्न भिन्न गुण प्रकाशित होंगे। बुद्धिसत्तम गुण कब प्रकाशित हुआ, बृहस्पति जी का शिष्यत्व कब प्रकाशित हो रहा है, या कृष्ण के वे दैत्य सखा थे इस बात का कब रहस्य उद्घाटन हो रहा है, कई सब बातें प्रकाशित हुई हैं। और उस बार मैं गिनाया भी था कि इस प्रसंग में यहाँ पर यह गुण प्रकट हो रहा है, यह गुण प्रकट हो रहा है, तो सब प्रकार से सब तरह से योग्य उद्धव जी थे। और उद्धव का एक श्लेष अर्थ होता है उत्सव, भगवान के विरह में दुखी ब्रज में भगवान उत्सव भेज रहे हैं, तो शोक से दग्ध लोगों के बीच मूर्तिमान उत्सव भेज रहे हैं सुखी करने के लिए। तो गृहित्वा पाणी न पाणी, भगवान ने अपने पाणी से उद्धव जी का पाणी पकड़ा और उनसे इस तरह कहने लगे,
हे सौम्य ब्रजम गच्छ, हे उद्धव हे सौम्य ब्रजम गच्छ। क्या आवश्यकता है ब्रज में जाने की? तो सबसे पहले भगवान कहते हैं, नह पित्र हो, हमारे माता पिता को प्रीतिम आवह, उन्हें प्रीति दो, प्रसन्नता दो, उनको सुख दो। वह का अर्थ है सम्यक वह, और गोपियां जो मेरे विरह की पीड़ा से दग्ध हैं उनका दुख है, मत संदेशर विमोच, मेरे संदेश से दूर करो, मेरे माता पिता को प्रीति दो और मेरे संदेश से गोपियों का दुख दूर करो जो मेरे वियोग से उत्पन्न हुआ है करके मूल वाक। तो उद्धव ब्रजम गच्छ, इस पर हरीश्वरी जी लिखते हैं कि भगवान है सौम्य संबोधन क्यों कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। आधीन तदीयं व्यपने तुमस्मि न कोपि सक्तः तदहं कथं स्याम। जहां तक श्री गोपी जनों के विरह पीड़ा को दूर करने की बात, जिसके विरह में वे दग्ध हैं, आप नहीं जाएंगे तो कैसे सुखी हो सकती, उनकी विरह पीड़ा कैसे दूर होगी, कोई भी समर्थ नहीं है तो मैं कहां से समर्थ हो सकता हूं, केवल आप समर्थ हो। नैसा चिंता से हृदय सौम्य संबोध संदेश मदात स्वामीश, भगवान ने कहा कि इसकी चिंता मत करो उद्धव, क्योंकि तुम सौम्य हो। सोम चंद्रमा को कहा जाता है, सोम से अमृत की किरणें निकलती हैं और कठिन से कठिन दाह का समन कर देता है चंद्रमा, तुम सौम्य हो। चंद्रमा सोम का जो है अथवा सोम जैसा जिसमें गुण है उसको सौम्य कहते हैं। तो तुम्हारी वचन रूपी किरणें जब निकलेंगी तो निश्चित मुझे विश्वास है कि गोपी जनों का विरह जलन दूर हो जाएगा। सौम्य संबोधित करके कह रहे हैं। दिन में कितनी गर्मी पड़ती है शरद ऋतु में खास करके, और रात्रि में जब सोम का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, तो शीतलता छा जाती है। तुम जाओगे ब्रज में तो जो हमारे विरह से लोग जल रहे हैं, विशेष करके गोपियां, निश्चित उनको शांति मिलेगी। देख रहे हो मित्र, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, किसी भी हालत किसी भी परिस्थिति में मेरी यहाँ आवश्यकता है, तुम जाओ और उन्हें सुखी करो। सुखम आ सम्यक वह, प्रीतिम का अर्थ सुख है और आ का अर्थ है सम्यक और वह का अर्थ है स्वचातुर्येण बलादिव प्रापय। यद्यपि मेरे विरह में इतना दग्ध है कि तुम्हारे द्वारा सुखी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी बलात उनको सुखी करो। स्वचातुर्येण, अपनी चतुराई से, अपनी कला से, इस ढंग से जाकर के बताओ कि उनको विश्वास हो कि मैं अब आ रहा हूँ, वो सुखी हूँ। मत बिना तव प्रीते है दुःसाध्यत्वात्, क्योंकि मेरे बिना उनकी प्रसन्नता दुःसाध्य। जदवा प्रवाह न्याय न कुरु यथा तत्पश्चात अपि तयो प्रीति ही तिष्ठेत इत्यर्थ। आवह का अर्थ है बहा दो, धारा की तरह उनको प्रसन्न करो, जिसे तुम्हारे मथुरा लौट आने के बाद भी तयो प्रीति ही तिष्ठेत, वह उनकी प्रसन्नता रहे, उनका सुख रहे। और गोपी नाम मद वियोगाधि मत संदेश विमोच, मद वियोगे न यह आधि ही मनोदुखम तम विशेषण मोचया। वियोगाधि मन में जो पीड़ा है, दुख है गोपी जनों के, शरीर में भी सब जगह पीड़ा है, तो भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण जो पीड़ा है उसको कह रहे हैं विशेषण मोचय विमोचय दृढ़ बंधनवत हृदय संलग्न। हृदय में ऐसा दुख सट गया है, ऐसा जकड़ गया है कि तुमको उसको खोलना होगा, हटाना होगा, और मेरे संदेशों से ही वो जा सकता है। स्पष्टतया त्याज एवं आधि विमोचन मात्र न तो प्रीतिम कर तुम सक्यसी इति अर्थ। तो वहां कहा कि प्रसन्न करो मेरे माता पिता को। और इस श्लोक इस आधे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि गोपियों की विरह व्यथा का विमोचन करो। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि गोपियों को तुम सुख नहीं दे पाओगे, केवल थोड़ी थोड़ी सी विरह व्यथा भर दूर कर सकते हैं। इनको भी कहते हैं गोपियों को सुख दो प्रसन्न करो, ऐसा नहीं कह रहे, उनकी विरह व्यथा विमोचय, अच्छी तरह से उनकी विरह व्यथा को दूर कर दो। सुख तो बिना मेरे संयोग के उन्हें नहीं हो सकता। तच्च मत संदेश से ही बहु भी रेवा, और वह भी उनका दुख मोचन होगा मेरे संदेशों के द्वारा ही। तो बहु वचन, एक संदेश नहीं, बहुत संदेश, संदेश ही न तो संदेश न, बहुत संदेशों से होगा। बहुत प्रकार से जो मैं बात तुमको बता रहा हूँ वो सब कहना, नचत तद्वाक चातुर्जा दिना। गोपियों का विरह ज्वलन, उनकी विरह वेदना तुम्हारे वाक चातुर्य से नहीं जाएगी, मेरे संदेश से जाएगी, और बहुत संदेश से। उद्धव जी को ये समझा भी रहे हैं कि तुम अपनी ओर से कोई बात मत बकना, मैं जो कह रहा हूं वही कहना है। ये अभी से संकेत कर रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान भेज रहे हैं तो जानते हैं कि उद्धव मेरी विभूति है और वो तो मेरा स्वरूप है। तो एक मैं अपनी विभूति को अपने स्वरूप के पास भेज रहा हूं, जिससे मदात्मिका भगवान बोले, इस पर हरिश्री जी कहते हैं अपने विभूति को भेज रहे हैं अपने स्वरूप के पास, तो ये सिखाएगा कि वो सिखाएंगे। भगवान मदात्मिका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उद्धव को समझ लेना चाहिए कि किसके पास भेजना जा रहे। भगवान कह रहे हैं गोपियों में हमें भेद नहीं है, मेरा स्वरूप है साक्षात। तो इसलिए मत संदेश ही संदेश ही शब्द से भी काम चल सकता था कि संदेशों के द्वारा उनका दूर करो, लेकिन मत संदेश ही मेरे ही संदेशों के द्वारा उनका दुख दूर किया जा सकता है। मैं जो कह रहा हूं अक्षर अक्षर वही सुनाना। विमोचय शब्द का अर्थ, विमोचन का अर्थ होता है खोलना, खोलना हृदय को चारों तरफ से वो दुख फंसा कर जकड़ लिया है, निकल नहीं रहा है हृदय से वो दुख। नह पितृ प्रीतिमावह, मेरे माता पिता को सुख दो। तो इसमें नह शब्द का प्रयोग भगवान ने क्यों किया है? नह का अर्थ होता है बहुवचन में हमारे माता पिता, हमारे माता पिता का दुख दूर करो। यह नव भी पाठ भेद है हमारे और बलराम जी उसका अर्थ किया, लेकिन वास्तव में नह पाठ है, क्योंकि ब्रजवासी सब जानते हैं कि श्री बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए भगवान ऐसा कह ही नहीं सकते कि नव पितृ। हमारे माता पिता ब्रज में रहते हैं, बलराम जी के माता पिता मथुरा में रहते हैं, ये सब भगवान जानते हैं इस बात को, और सब जगह विख्यात बात। तो न पितृ कह रहे हमारे माता पिता, बहुवचन इसलिए कह रहे न कि हमारे पिताजी हमारी माँ हमारे माननीय हैं, तो उद्धव तुम्हारे भी माता पिता ही है, और तुम्हारे जैसे जितने लोग हैं हमारे भाई सबके भी माता पिता। बहुवचन का प्रयोग इसलिए कर श्रीवास सनातन गोस्वामी कहते हैं न इति बहुत्वम तत्पितृत्वेन आत्मनो बहुमानत। एक अर्थ है कि नंद जसोदा जैसे पिता और माता कृष्ण को प्राप्त हैं, तो कृष्ण बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अपनी अपने गौरव को व्यक्त करने के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा अर्थ किंवा मत पितृत्वेन भवा दृशामपि तौ पितरवित्ति अभिप्रायेण, हमारे माता पिता हैं तो तुम्हारे जैसे भी जो लोग हैं सबके माता पिता हैं, अतः तयो हो तस्य स्नेहम वर्धयति, अपनी माता पिता में उद्धव जी का स्नेह बढ़ा रहे। हमारे माता पिता है तो तुम्हारे भी माता पिता हो, और माँ जो हमको जन्म दी है, पिताजी जो पालन किया, जो हमारे विरह में वो लोग बहुत दुखी हैं, तो जाकर के संदेश दो उनको, समझाओ। ये भगवान कह रहे स्नेहम वर्धयति मद विच्छेद दुखित, इतनी मेरी सेवा की और आज मेरे विरह में रो रहे हैं, दुखी हैं, तो तुम जा करके उनका दुख दूर करो, उनको प्रसन्न करो। इस पर सूरदास जी ने लिखा है कुछ पद, वो भगवान भेज रहे हैं उद्धव जी के द्वारा संवाद। सबसे पहले पिता नंद जी को संदेश दे रहे हैं, कहियो नंद कठोर भये, कहीं आप जाकर कहिएगा कि हमारे पिताजी नंद महाराज कठोर हो गए इस समय, उलाहना दे रहे हैं संदेश के रूप में, वही कठोर होगा, हम कठोर नहीं हैं, एक संदेश दे रहे हैं। कहियो नंद कठोर भये, हम दो बीरे डारू परे घरे, मन थाती सौंप गए, हम दोनों भाइयों को दूसरे के घर में डार करके चले गए, पर घर में डार कर चले गए, पर घर मतलब वसुदेव जी के घर में फेंक करके चले गए, वही पहुंचाने आए थे नंद बाबा, ब्रज से पहुंचाने के लिए आए थे, रथ पर कृष्ण बलराम आए थे अकुर जी के साथ, और नंद बाबा बैलगाड़ी पर चढ़ करके आए थे, और सब गोप ग्वाल भी। तो इसी को कह रहे हैं कि ला करके दूसरे के घर में रख दिए और हमारी फिर सुधी नहीं ली, इतना कठोर हो गए हमारे पिताजी। कहियो नंद कठोर भय, हम दो वीर डार पर घर, वीर का अर्थ होता है भाई, दोनों भाइयों को दूसरे के घर में रख करके चले गए, जैसे कोई किसी की थाती रखा हो और लौटा दे लगता है, उस तरह से रखे थे, फिर लौटा दी और सुधी नहीं ली। तनक तनक तय पाली बड़े किए, बहुत सुख दिख राये, छोटा छोटा से पाल पोस करके इतना बड़ा किया, और बड़ा हो गए तो हमको मथुरा पहुंचा दिए और हमारी सुधी नहीं ली। तनक तनक ते पाली बड़े किए, बहुत सुख दिखराए, गोचारण को चलत हमारे पाछे को शक धाए। जब हम दोनों भाई गोचारण के लिए चलते थे तो पिताजी हमारे पीछे पीछे कोसों दूर आते थे पहुंचाने के लिए, उस समय कितने मृदु थे। भगवान वो सब लीलाएं याद कर रहे हैं। नंद बाबा कृष्ण को छोड़ने जाते थे गोचारण के लिए और कोसों दूर चले जाते थे। गोचारण को चलत हमारे पाछे को शक धाए, कितना स्नेह है नंद बाबा का कृष्ण के पीछे पीछे कोसों दूर जाना छोड़ने के लिए, और जब अगवानी करनी होती थी तो फिर कोसों दूर जाते थे, प्रतीक्षा करते थे कृष्ण आ रहा है आ रहा है। तनक तनक ते पाली बड़े किए, बहुत सुख दिख रहे, छोटे छोटे से कैसे कैसे पाल पोस करके बड़े किए और बहुत सुख दिए। गोचारण के लिए जब हम दोनों भाई चलते थे तो कोसों दूर पीछे पीछे आते थे। ये वसुदेव देव की हम सो कहत अपने जाए, इधर आ करके हम ऐसे फंस गए हैं कि देव की वसुदेव कहते हैं कि तुम हमारे बेटा हो, अब हम क्या करें, तुम तो देख ही रहे हो उद्धव, ये लोग कितना जबरदस्ती कर रहे, कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, ये दोनों कहते हैं कि हम जन्म दिए हैं तुम। ये वसुदेव देव की हम सो कहते अपने जाए, ये कहते हैं कि तू हमारे बेटा हो, ये जान ही नहीं देते हैं ब्रज में हमको। बाबा आते और वो कहते कि नहीं कृष्ण हमारा बेटा है, तब एक जाने का रास्ता भी निकलता है। अब हम क्या करें, हम अपने घर जाना चाहते हैं तो लोग कहते नहीं तुम इस घर के घर में रहो। तो ये वसुदेव देवकी हम सो कहत अपने जाए, बहुर विधाता जसुमत जो के हम इन गोद खिलाए। फिर ब्रह्मा विधाता मां यशोदा के गोद में हमको खेलने का सुख नहीं दिया, जाकर के कहना तुम उनसे। मतलब भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि मां यशोदा हमको मथुरा से ले जाने का कोई उपाय करे, नंद बाबा यहाँ आवे और ले जाने का उपाय करे। और उधर भगवान ने संदेश भी दिया था कि आप लोग आइएगा मत, मैं खुद ही आऊंगा। इसीलिए नंद बाबा नहीं जा पाए, उन्होंने कहा था मैं आगमिष्यामि, मैं आऊंगा। माँ यशोदा के गोद में जो खेलने का सुख प्राप्त हुआ वो विधाता हमको पुनः नहीं दिया। बहुरी विधाता जसुमत जो के हम इन गोद खिलाए, कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पाए। सूरदास ब्रज समाधान करुआ जो काल हम आए। किस काम का यह राज्य है, यहाँ बहुत प्रकार का सुख है लेकिन ये सुख ब्रज सुख के आगे किसी प्रकार के नहीं है। हे मित्र जा करके समाधान करो, समझा दो हमारे माता पिता को, बस आज काल हम आए, आज काल में आ गए। एक मुहावरा है कि हम बहुत जल्दी आ रहे, बस यही बाबा समझे, यही माँ समझे कि उनका बेटा आज कल में अब आने वाला है, लौटने वाला है, वो चिंता ना करें। और माता यशोदा से संवाद दे रहे हैं, माँ यशोदा को ये कहना, ये भी सूरदास जी का पद। नी के रहियो जसुमत मैया, आवेंगे दिन चार पांच में हम हलधर दो भैया। कहे कि माँ तुम ठीक से रहना। नी के रहियो जसुमत मैया, कि माँ तुम ठीक से रहना, मेरी चिंता मत करना, ठीक से खाना पीना सुख से रहना। बस तीन चार पांच में, चार पांच दिन हम और हलधर दोनों भैया आएंगे, आएंगे दिन चार पांच में हम हलधर दो भैया। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे काहुन कहो कन्हैया। माँ जब से मैं तुमसे बिछड़ा इस मथुरा में मुझको कोई कन्हैया कभी नहीं कहा। माँ यशोदा कृष्ण नाम को इस तरह से कहती थी, कृष्ण नाम यह सुनो गर्ग पे कान कान कही बोले। ब्रज में कन्हैया नाम भगवान को बहुत प्रिय है। जिस दिन से मैं आया ब्रज से तुमसे बिछड़ा तो मुझे कोई कन्हैया नहीं कहा। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे काहुन कहो कन्हैया। कब हूँ प्रातन कियो कलेवा साझन पीन छैया। और जब से मैं मथुरा आया माँ प्रातः काल में कलेवा कभी नहीं की कर सका। तुम तो गोद में से जब मैं उठता था तुम्हारे गोद से तो ही तुम खाने को देती थी, माखन देती थी, रोटी देती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद सवेरे में कहीं भोजन ही नहीं किया, किसी ने पूछा ही नहीं कि सवेरे इसको भूख लगती होगी। तो कब हूँ प्रातन कियो कलेवा साझन पीन छैया। और सांझ के समय में वो छैया नहीं पिया, छैया का अर्थ धारोष्ण दूध। नंद बाबा कल कभी दुहते थे मुँह कृष्ण के मुँह में धारोष्ण दूध गाय के, उसको छैया कहते, छाक लगा करके पी ला। प्राय गोपों के यहाँ बहुत गिलास बर्तन नहीं होता है तो गरम गरम दूध है अंजलि में लेकर के पीते हैं, उस छाक लेना आज भी कहते हैं भोजपुरी में। तो कभी हमको वो गाय का धारोष्ण दूध नहीं मिला। कभी सवेरे भोजन नहीं मिला। और फिर कहते हैं कि माँ मेरा जो सामान है वो संभाल करके रखना, कई सामान है, मैं आऊंगा तुरंत। बंसी बेनु संभारी राखियो और अबेर सबेरो, जब तुम घर से बाहर जाती हो काम करने के लिए अबेर सबेर, तो उस समय सामान की चोरी का डर रहता है, इसलिए संभाल करके रखना। विशेष करके क्या है, बंसी बेनु संभारी राखियो और सब अबेर सबेरो, मत ले जाओ चुराय राधिका कछुक खिलौना नैरो। राधिका से सावधान रहना, वो हमारी बंसी हमेशा चुरा करके जाती थी, तो वो हमारा न चुरा ले। और हमारा बहुत सा खिलौना जो मैं रखा हूँ वो भी संभाल करके रखना। मत ले जाय चुराय राधिका कछुक खिलौनो मेरो, कहियो जाय नंद बाबा सो निपट निठुर जिय किन्हु। नंद बाबा से कहना कि इतना कठोर चित हो गए, कहियो जाय नंद बाबा सो निपट निठुर जिय किन्हु, सूर श्याम पहुँचाय मधुपुर पुनि संदेश लीन्हु। भगवान किस तरह से ब्रज की याद कर रहे हैं, विशेष करके शुरू में नंद बाबा माँ जसोदा की, गोपों की, गोपिकाओं की, रत्नाकर जी के द्वारा हम लोग लिखे गए कविता का स्वागत करेंगे। नंद यशोमती के प्रेम पगे पालन की लार भरे लालन की चल गवती, कह रत न कर सुधा कर प्रभा समी जमुना का छारनी की रंग रसरारनी की बिपिना बिहारनी की हंस हो मसावती सुधि ब्रज वसीना दी वैया सुख रासीना की उधनीता हम को बुलावन को आवती। जसोमती के प्रेम पगे पालन की लाड़ भरे लालन की लालच लगावती, नंद और जसोमती के प्रेम पगे पालन की, वे मेरा किस तरह पालन किए हैं, वो पालन प्रेम से पगा हुआ है। जैसे हम लोग रसगुल्ला देखते हैं वो सीरा में पगा होता है, वैसे जो उन्होंने पालन किया प्रेम से पगा हुआ पालन था। मुझे सपने में भी भगवान नहीं समझ, हमें एक छोटा सा अबोध बच्चा समझ करके प्रेम से पालन किया और लाड़ भर लालन और लालन की गोद में खिलाए, बहुत तरह का प्यार किए। आज उनकी जो सुधि आ रही है मुझे, वो सुधि उसकी लालच लगा रही है, मतलब मेरे अंदर बहुत लोभ हो रहा है कि अभी मैं चल दूं ब्रज में, अभी चल दूं, जब जब याद आ रही है। नंद यशोमती के प्रेम पगे पालन की लाड़ भरे लालन की लाल चल गवती। और दूसरे पंक्ति में कह रहे, कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासो मढ़ी मंजू मृग नयनी के गुण गन गावती। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि सुधाकर की प्रभा से जो मढ़ी हुई है, गोपियां इतनी सुंदर हैं कि लगता है कि चंद्रमा की किरणों से उनका श्रृंगार किया गया है, तो उनके मंजू मृग नयनी के गुण गन गावती, आज जब मुझे उनकी सुधि आ रही है तो उनके गुण की याद आ रही है, और हमारे उनकी सुधि हमसे गवाने लगती है, का रही है, जिनकी आंखें मृग हरिण के समान है और बहुत सुंदर है, गोपी जनों की याद आ रही है। कह रत न कर सुधा कर प्रभा भसमारी मंजुमृग नैनी के गुण गान गावती जमुना कछारो छारणी की जमुना के तट की मुझे याद आ रही है और जमुना के किनारे जो वन है और उन वनों में जमुना के तट पर मैंने जो रंग रस रारणी की जो मैंने रास विहार किया और गोपी जनों के साथ जो रार किया पनघट पर पानी भरने में और फूल चुनने में जो मैं उनके साथ रारणी उनके साथ जो झगड़ा करता था रंग रस रारणी की विपिन बिहारणी की हंस हूं सावती और अपने सखाओं के साथ जो मैं वन में अनेक विहार किया गोपीजनों के साथ आज उसकी हौस मतलब उत्कट अभिलाषा हमारे हृदय में उठ रही है। मैं चाहता हूँ कि वहीं जाकर के वही करूँ वही लीला करूँ। सुधी ब्रज बसीना भी वैया सुख रासीना की उधनी हमको ब्रजवासी न दिवैया सुख राशि न की हमारे ब्रजवासी हमको सुख की राशि देने वाले हैं बहुत ज्यादा सुख दिए हैं सुख राशि न दिवैया सुख देने वाले हैं सुख की राशि राशि हमको वो दिए हैं। उनके साथ रहकर मैं बहुत सुख भोगा हूँ विधाता हमारा वह दिल दूर कर दिया। उद्धव ब्रजवासियों की गोपियों की नंद जसोदा के पालन की पोषण की सबकी सुधि मुझे नित आ रही है और सुधि ऐसी आती है कि वो हमको बुलाने के लिए आ रही है हमको ब्रज के प्रति निमंत्रण दे रही है।
गोकुल की गल गल गली गोरसा के काज लाज बस के बहाई वो कह रात मकरी जाई वो नवेली न को गाई वो गवाई वो नाची वो नचाई वो की वो श्राम हर मनु मोहिनी मृदुल मंजु बांसुरी बजाइबो उधो सुख संपत्ति समान ब्रज मंडल के भूले हूँ ना भूले भूले हम को भुलाइबो भूले हूँ ना भूले भूले हम को गोकुल की गैल 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 ग्वाली न की गोरस के काज लाज बस कह बहाई वो। उद्धव मैं ब्रज की लीला क्या बात बताऊं गोकुल की गली गली में और झुंड की झुंड गोपियों के गोरस के लिए मैं लाज को किस तरह बहा देता था मैं उस गोरस के लिए दूध के लिए तरसता था। गोरस से श्लेष अर्थ भी है समझदार लोग समझेंगे। गोकुल की गैल 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 ग्वाली न की गोरस के काज लाज बस कह बहाई लाज को अपने बस में करके बहा देता था मतलब मुझे कोई लज्जा नहीं थी दूध मांग मांग करके पीता था खाता था। तो लीला मुझे याद आ रही कहे रत्नाकर रिझाई वो नवेली न को और उन ब्रज ज्योतियों को मैं किस तरह रिझाता था गाई बो गवाई बो और नाची बो नचाई बो गाता था गवाता था नाचता था नचाता था की बो श्रमहार और कहीं मैं श्री राधा रानी को पंखा झलता था उनका चरण दबाता था मतलब श्रमहार करता था उनके परिश्रम को मैं दूर करता था किसी भी गोपी के की बो श्रमहार मनुहार कह विविध विधि और उस तरह से मनुहार मनाता था माननी बनने पर। गोकुल की गैल 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 ग्वाली न की गोरस के काज लाज बस कह बहाई लाज को अपने बस में करके बहा देता था, मतलब मुझे कोई लज्जा नहीं थी, दूध मांग मांग करके पीता था खाता था। तो लीला मुझे याद आ रही, कहे रत्नाकर रिझाई वो नवेली न को, और उन ब्रज ज्योतियों को मैं किस तरह रिझाता था, गाई बो गवाई बो और नाची वो नचाई वो, गाता था गवाता था नाचता था नचाता था, कीबो श्रमहार, और कहीं मैं श्री राधा रानी को पंखा झलता था, उनका चरण दबाता था, मतलब श्रमहार करता था, उनके परिश्रम को मैं दूर करता था किसी भी गोपी के, कीबो श्रमहार मनुहार कह विविध विधि, और उस तरह से मनुहार मनाता था मालिनी बनने पर, मैं वो मनुहार लीला मतलब मनाने की लीला और परिश्रम दूर करने की लीला, और फिर मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाई वो, और वो मधुर मोहिनी बांसुरी का बजाना, उधो जब जब ब्रजमंडल के इस सुख संपत्ति का स्मरण आ रहा है, तो भूलने पर भी नहीं भूल रहा है, भुलाना मुझको भूल गया, कैसे भुलाया जाएगा ये भी मुझे भूल, मैं भूल गया। गोकुला की गल 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 ग्वालिन की गोरस के काज लाज बस के बहाई वो, ब्रजमंडल का वैभव और सुख। भगवान ऐसे मथुरा में वे राजा के रूप में हैं, नाम मात्र के लिए उग्रसेन जी राजा हैं, लेकिन वास्तव में वही राजा है, पर ब्रज के सुख का स्मरण हो रहा है तो पश्चाताप कर रहे, रो रहे हैं। नंद और जसोदा जी के प्यार का स्मरण हो रहा है, बता रहे हैं, और जमुना के तीर पर क्या क्या लीलाएं होती थी गोपियों के साथ और गोपों के गोप सखाओं के साथ, उसकी याद कर रहे हैं। नंद आज सुमती के प्रेम पगे पालन की लाल भरे लालन की लाल चला गावती, भगवान यह कह रहे हैं कि मैं ये सब मुकुट लगाकर क्या करूंगा और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रत्नाकर जी कहीं है, ओरे के पखवन को मुकुट छबिलो छोरी कृत मणि मंडित धराई करी है कहे रत्नाकर कटरास व्यंजन चबाई करी बालन को झोंकी बीरहन लन हरि सुर वृंद की
भलाई करी है कहा प्यारो नाम गोविंद ठाकुर तिलक के कहाई करी है।
मोर के पखवन को मुकुट छबीलो छोरी, मोर के पंखों का छबीला मुकुट छोड़कर मणि मंडित किरीट धारण कर क्या करूंगा, क्या इसमें सुख। किरीट मतलब किरीट, मुकुट मणि मंडित, हीरा से जड़ा हुआ मुकुट पहन कर क्या करूंगा। मोर के पखवन को मुकुट छबीलो छोरी, उद्धव जी से भगवान दिखा कर कह रहे हैं कि ये मणियों से बना हुआ मुकुट धारण करके क्या करूंगा। मानो अपने पलंग पर भगवान उस मुकुट को फेंक करके कह रहे हैं कि इसको धारण कर क्या करूँगा, ये किस काम का है। मोर पंख का मुकुट ही सबसे अच्छा, छबीलो मतलब छवि जिसमें है, फब रहा है, बहुत सुंदर लगता है मोर का मुकुट, उसको छोड़ करके मणिमंडित किरीट धारण कर क्या करूँगा। और कहे रत्नाकर त्यों माखन स्नेही बिन, और स्नेही माखन सरस माखन को छोड़ करके ये छह प्रकार के साग सब्जी चबा कर क्या करेंगे, इसको चबाना कह रहे हैं। वास्तव में कभी कभी साग चबाना पड़ता है ना। तो सटरस व्यंजन चबाई करी है कहा, इसको हम क्या चबाएंगे। गोपी ग्वाल बालन को झोंक बिरहानल में, गोपी ग्वाल बालों को बिरह के आग में दवानल में झोंक करके फिर देवताओं की बला, देवताओं का दुख हर कर क्या करूँगा, क्या लाभ होगा। और अपना प्यारा नाम गोविंद और गोपाल छोड़ करके तीनों लोगों का ठाकुर कहा कर क्या करूँगा, द्वारकाधीश कहन लाने से हमको क्या लाभ है, क्या सुख है। मोर के पखवन को मुकुट छबिलो छोरी, कृत मणि मंडित धराई करी है कहा, कह रत्न बिन सटरस व्यंजन चबाई करी है कहा, गोपी ग्वाल बालन को झोंकी बिरहन लन हरि सुर बृंद की बलाई करी है कारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई हाई ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी है। तो भगवान तीनों लोक के ठाकुर हैं। ठाकुर का अर्थ होता है रक्षक, स्वामी। तो तीनों लोगों का ईश्वर कहा कर क्या करूँगा। हमको तो गोविंद और गोपाल नाम प्रिय है, गाय का रखवाला, गाय का पालन करने वाला। इन नामों को छोड़ करके द्वारकाधीश कहलाना या त्रिलोकनाथ कहलाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस संसार में सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं छोटे से, और भगवान बड़े से छोटा बनने में सुख मानते हैं। गाय चराना, जमुना के तट पर खेलना, जूठा खाना, बच्चों का चीना झपटी, खेल कूद, इसमें भगवान की रुचि है।
उधो मोही ब्रज विसरत नाही,
भगवान कह रहे हैं कि उद्धव मुझे ब्रज नहीं विसर रहा है, सर्वदा स्मृति बनी रहती है।
उद्धव मोही ब्रज विसरत नाही, उद्धव ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही, उधो मही ब्रज विशरत नाही, हंस उस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंदन की छाया सुर भी वे बाच बोहनी खरक दुहावन जाई ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गही गही यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही जब ही सुरती आवती वा सुख की जियउ मगत तनु नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निवाही अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निवाही सूरदास प्रभु रहे मौन है यह कही कही पछताही सूरदास प्रभु रहे मौन है यह कही कही पछताही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही
ऐसे उद्धव जी से भेंट होने पर कुछ पद आए हुए हैं लेकिन उसको अभी व्यक्त कर रहे हैं कि जब उद्धव जी समझाते हैं गोपी जनों को कि आप मथुरा चलिए वहीं पर कृष्ण के साथ आपका संग होगा साथ रहेंगे या कृष्ण को छोड़ करके निराकार ब्रह्म का ध्यान करो ये करो करो तो वे कहती हैं
हम तो नंद घोष की बासी हम तो नंद घोष की बासी नाम गोपाल जाति कुल गोपही गोप गोपाल उपासी हम तो नंद घोष की बासी हम तो नंद घोष की बासी
हम नंद गांव की रहने वाली हैं नंद घोष नाम है गोपाल जात और कुल गोप है और गोप और गोपाल की उपासिका गौए और कृष्ण के
गिरिवर धारी गोधन चारी गिरिवर धारी गोधन चारी वृंदावन अभिलाषी राजानंद जसोदा रानी राजानंद रानी जलधि नदी जमुनासी हम तो नंद घोष की वासी
गिरिवर धारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी गिरिवर धारी गोधनचारी इसका अर्थ यह है कि गिरिवर धारण करने वाले हमारे हैं गोधन चराने वाले हमारे हैं हम वृंदावन के अभिलाषी हैं हमारे राजा हैं नंद महाराज रानी हैं जसोदा जी और हमारे लिए जमुना ही जलधि है द्वारका नहीं मतलब द्वारका में समुद्र है तो रहे खारा समुद्र हमको उसकी जरूरत नहीं हमारी जमुना ही हमारे लिए जलधि
प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि सूरदास प्रभु कहो कहलो अष्ट महासिद्धि दासी हम तो नंद घोष की वासी हम तो नंद घोष की वासी हम तो नंद घोष की वासी।
उद्धव जी ने जब कहा कि कृष्ण को छोड़ दो तब तुम सुखी हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण कृष्ण है, इसमें तो संदेह नहीं है, तो कृष्ण को विसार करके सुखी हो जाओ। इसका उत्तर देते हुए गोपीजन कहती है
हमारे हरी हारी लकी लकरी हमारे हरी हारी लकी लकरी मन बच कर्म नंद नंदन कुसह दृढ़ पकरी हमारे हरी हारी लकी लकरी हमारे हरी हारी लकी लकरी
हमारे हरी कृष्ण हारिल की लकड़ी है। हारिल एक पक्षी होता है और वह एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है। तो हमारे हरि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी, हम कहीं भी रहे कितना भी दुख में रहे कुछ भी रहे उनको नहीं छोड़ सकती। कुछ भी हो जाए वज्रपात पड़े कुछ भी हो लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ सकती है। हारिल जैसे उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है वो पक्षी, उसी तरह हम नहीं छोड़ सकते हारिल की लकड़ी को।
हमारे हरी हारी लकी लकड़ी हमारे हरी हारी लकी लकड़ी मन बच कर्म नंद नंदन सो उरयह दृढ़ पकड़ी।
मन से वचन से और कर्म से हमने नंद नंदन को पकड़ा है, कभी नहीं छोड़ सकती है। हमारे लिए हारिल की लकड़ी जैसे है।
जागत सोवत सपने सो दुख जागत सोवत ने सो दुख कान कान जकरी जागत सोवत सपने सो दुख कान कान जकरी सुनत ही जोग लगत है सोयली ज्यो करुई ककरी सुतौ व्याधि हम को न आए सुतौ व्याधि हम को न आए देखी सुनी न करी यह तो सूरति नहीं ले सौंप यह तो सूरति नहीं ले सौंप जिनके मन चकरी हमारे हरी हारी लकी लकरी हमारे हरी हारी लकी लकरी हमारे हरी हारी लकी लकरी मन बच मन क्रम वचन नंद नंदन उर मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी हमारे हरी हारी लकी लकरी
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है सो जो करी ककरी हमारे हरी हरी लकी लकरी हमारे हरी हरी लकी लकरी सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी देखी सुनी न करी या तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी हमारे हरी हरी लकी लकरी हमारे हरी हरी लकी लकरी
हमारे लिए हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमने मन कर्म और वचन से नंदनंदन को हृदय में दृढ़ करके पकड़ा है। जागते सोते और सपने में रात हो या दिवस सब समय कृष्ण कृष्ण ही हम जपा करती हैं बका करती हैं। और हे उद्धव तुम्हारे यह योग की बात हमें ऐसी कड़ी लग रही है जैसे करुई ककरी। ये हमारे लिए तुम व्याधि लाए हो योग का संदेश नहीं लाए हो। हमने ना ऐसा कभी देखा है ना सुना है। यह तो योग का संदेश उन्हें ले जाकर के दो जिनका मन अभी चक्कर में है अर्थात चंचल है जिनका मन अभी कृष्ण में नहीं लगा है उन्हें ले जाकर के योग को सौंपो। हम इसे कभी ग्रहण नहीं कर सकती। गोपियों के नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं तो गोपियां कहती हैं भगवान से हे प्रियतम हमारे नेत्रों ने क्या अपराध किया है कि आप इन्हें इतना दुख दे रहे हैं। सूरदास जी गा रहे हैं कहा इन नैनन को अपराध कहा इन नैनन को अपराध कहा इन नैनन को अपराध कहाइन नैनन को अपराध कहाइन नैनन को अपराध रसना रटते सुनत जस श्रवणनी रसना रटते सुनत जस श्रवणनी इतना यगम अगाध कहाइन नैनन को अपराध कहाइन नैनन को अपराध कहाइन। हे प्रियतम हमारी रसना आपके गुणों को रटती है इसको तो तृप्ति हो जाती है तथा हमारे श्रवण भी आपके गुणों को सुनते हैं इन्हें भी तृप्ति होती है
परंतु नेत्र आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, अतः ये छटपटा रहे। भोजन कहे भूख क्यों भाजती, बिनु खाए कह स्वाद, इकटक रहत छुटत नहीं कब हूँ, हरि देखन की साध कहाइन, नैनन को अपराध कहाइन, नैनन को अपराध कहाइन, नैनन को अपराध, ये दृग दुखी बिना वह मूर्ति, ये दृग दुखी बिना वह मूर्ति, कहो कहाँ अब कीजे, कहो कहाँ अब कीजे, एक बेर ब्रजानी कृपा करी, एक बेर ब्रजानी कृपा करी, सूर सुदर्शन दीजे, सूर सुदर्शन दीजे, कहाइन नैनन को अपराध कहाइन, 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 नैनन को अपराध। जब ते बिछुर कुंज बिहारी, जब ते बिछुर कुंज बिहारी, जब ते बिछुर कुंज बिहारी, निंदन परे घट नहीं रजनी, निंदन परे घट नहीं रजनी, बिथा बिरह जुर भारी, बिथा बिरह जुर भारी, जब ते बिछुरे कुंज बिहारी, जब से कुंज बिहारी बिछुड़ गए मथुरा चले गए, तब से हे सखी नींद नहीं पड़ रही है, आंखों में नींद नहीं आ रही है, और यह रात कल्प के समान लंबी हो गई है, यह घट नहीं रही है, और विरह व्यथा का ज्वर बहुत बड़ा हो गया है, ताप बढ़ गया है। सरदरन नलिनी दल शीतल, सरदरन नलिनी दल शीतल, जगमग रही उजियारी, रवि किरणन ते लागति ताती शीतल शशि जारी जब ते बिछुरे कुंज बिहारी जब ते बिछुरे कुंज बिहारी जब से कुंज बिहारी का वियोग हुआ जब से वे दूर हो गए। अरे सखी यह शरद की रात्रि जिसमें कमल खिले हैं नलिनियां खिली हैं और प्रियतम जब हमारे साथ रहते थे उस समय कितनी शीतल लगती थी वह जगमग रात्रि चंद्रमा के कारण, लेकिन उसी चंद्रमा की किरणें आज सूर्य की किरणों से भी अधिक दाहक लग रही। जब ते बिछुरे कुंज बिहारी शरद रैन नलिनी दल शीतल जगमग रही उजियारी रवि किरणन ते लागति ताती शीतल शशि जारी जब ते बिछुरे कुंज बिहारी श्रवण निशब्द सुहाइन सखिरी श्रवण निशब्द सुहाइन सखिरी पिक चातक द्रुम डारी उरते सखी दूर करिहारही कंकन धरही उतारी। अरे सखी वृक्षों की शाखा पर बैठे हुए कोयल और चातक के शब्द सुहा नहीं रहे। श्रवणनि शब्द सुहाई न सखीरे पिकचा तक द्रुमडारी उरते सखी दूरी कर हारे। हमारे हृदय से हार को उतार कर रख दो और हमारे कंकड़ को हमारे हाथ से उतार कर रख दो। सूर श्याम बिन दुख लागत है कुसुम सेज करी न्यारी। कृष्ण के बिना पुष्प सेज हमारे लिए अत्यंत दुखद लग रही है, अतः पुष्प को हटाओ सज्जा पर से। सूर श्याम बिन दुख लागत है सूर श्याम बिन दुख लागत है कुसुम सेज करी न्यारी। बिलखी बदन वृषभानु नंदिनी बिलख बदन वृषभानु नंदिनी करी बहु जतन जुहारी जब ते बिछुरे कुंज बिहारी जब ते बिछुरे कुंज बिहारी जब ते बिछुरे कुंज बिहारी। श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्याकुल दुखिता गोपियां कहती हैं कि अरे कोई भी किसी के प्रेम के बंधन में मत पड़ना, प्रीति में बहुत दुख है। मति को प्रीति के फंद परे मति को प्रीति के फंद परे सादर स्वाति देखी मन माने सादर स्वाति देखी मन माने पंखी प्राण हरे मति को प्रीति के फंद परे देखी पतंग कहा क्रम कीनो जीव को त्याग करे अपने मरिबे ते न डरत है पावक पैठी जरे मति को प्रीति के फंद परे भौर स्नेही तो ही बताऊं केतक प्रेम धरे सारंग सुनत नाद रस मोयो मरिबे ते न डरे मति को प्रीति के फंद परे जैसे चकोर चंद को चाहत जैसे चकोर चंद को चाहत जल बिनु मीन मरे सूरदास प्रभु सो ऐसो करी सूरदास प्रभु सो ऐसो करी मिलाए तो काज सरे मति को प्रीति के फंद परे मति को प्रीति के फंद परे मति को प्रीति के फंद परे।
श्री कृष्ण विरह से दग्ध कोई गोपी चातक की विकलता को देखकर संतोष धारण करती है, कहती है अरे सखी यह चातक अपने प्रियतम मेह के वियोग में कब से लट रहा है, इसका प्रेम धैर्य देखकर मुझे कुछ कुछ धैर्य हो रहा है। तो वह सखी कहती है यह चातक मुझे जिला रहा है।
सखी रे चातक मोही जियावत सखीरी चातक मोही जियावत जैसे ही रैन रटती हाँ पिए पिए वैसे ही वह पुनि गावत सखीरी चातक मोही जियावत सखीरी चातक मोही जियावत जैसे ही रैन रटती हाँ पिए पिए वैसे ही वह पुनि गावत सखीरी चातक मोही जियावत अति ही सुकंठ दाह प्रीतम के तारु जीवन लावत अति ही सुकंठ दाह प्रीतम के तारु जीवन लावत आपुन पियत सुधार सयमृत आपुन पियत सुधार सयमृत बोली बिरहिनी प्यावत बोली बिरहिनी प्यावत सखीरी चातक मोही जियावत सखीरी चातक मोही जियावत यह पंछी जो सहाय न हो तो यह पंछी जो सहाय न हो तो प्राण महा दुख पावत जीवन सुफल सूरताही को जीवन सुफल सूरताही को काज पराये आवत जीवन सुफल सूरताही को काज पराये आवत सखीरी चातक मोही जियावत सखीरी चातक मोही जियावत सखीरी चातक मोही जियावत।
चातक जिसे पपीहा कहते हैं उसको आशीर्वाद देती हुई गोपी कहती है,
बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो बहुत दिन जीवो हो पपीहा प्यारो बहुत दिन जीवो बासर रहना नाम ला बोलत बासर रैन नाम ला बोलत भयो बिरजुर कारो बहुत दिन जीवो पपिया प्यारो।
तुम रात दिन अपने प्रियतम का नाम बोलते रहते हो और बिरह ज्वर से जल कर काला हो गए हो।
बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो बहुत दिन जीवो आप दुखित पर दुखित जानी जिए आप दुखित पर दुखित जानी जिए चातक नाम तुम्हारो देखो सकल विचार सखी जिए देखो सकल विचार सखी जिए बिछुरन को दुख न्यारो बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो जाहि लगे सोई पै जाने जाहि लगे सोई पै जाने प्रेम बान अनियारो जाहि लगे सोई पै जाने प्रेम बान अनियारो सूरदास प्रभु स्वाति बुंद लगी तजयो सिंधु करिखारो सूरदास प्रभु स्वाति बुंद लगी तजयो सिंधु करिखारो बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो बासर रैन नाम लाए बोलत बासर रैन नाम लाए बोलत भयो बिरह जुरकारो भयो बिरह जुरकारो बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो जाहि लगे सोई पै जाने प्रेम बान अनियारो सूरदास प्रभु स्वाति बुंद लगी सूरदास, प्रभु स्वाति बुंद लगी तज सिंधु करिखारो, तजयो सिंधु करिखारो। बहुत दिन जीवो पपिया प्यारो, 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 बहुत दिन जीवो।
हरि चंद ये ते हूँ पर बरस दिखावे क्यों ना, तरस तरन दिन प्यासे प्राण पात की। तेरे ब्रज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं, तेरे घन श्याम तेरे रूप की हों चात की। तेरे ब्रज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं।